Om Shanti. Om Shanti. अभी हम सभी ने बाबा की मुरली सुनी, तो याद करेंगे बाबा ने क्या कहा, कौन पढ़ाता है? विदेही बाप पढ़ाते हैं। क्या बनाने के लिए पढ़ाते हैं? विदेही बनाने के लिए पढ़ाते हैं। दुनिया में तो हम डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर आदि बनने की पढ़ाई पढ़ते, और यहां भगवान विदेही बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो चिंतन चला, विदेही बनने की पढ़ाई, जैसे हम रोज मुरली में सुनते हैं मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई, विश्व महाराजन बनने की पढ़ाई, और विदेही बनने की पढ़ाई से आपको क्या मिलेगा? तो देखो, जब हम विदेही बनते हैं, एक बार गुलजार दादी से किसी ने पूछा, एक टीचर बहन ने, दादी विदेही स्थिति क्या है? तो दादी ने यही कहा, विदेही अर्थात बिना देह के परम धाम की अवस्था। तो जब हम बिना देह के अपने आप को परम धाम में अनुभव करते हैं, तो परमात्म शक्तियां, परमात्म वरदान, परमात्म प्राप्तियां, परमात्म सारे दैवी गुण, सारे ईश्वरीय गुण हमारे अंदर आ जाते हैं, जिससे हमारे सत्युगी संस्कार बन जाते हैं, जिससे हम मनुष्य से देवता बनते हैं, है ना? तो विदेही बनने से आत्मा शक्तिशाली बनती है, कर्मेंद्रिय जीत बनती है, प्रकृति जीत बनती है, माया जीत बनती है। जैसे देही भान में आने से हमारे अंदर हर प्रकार के अवगुण, बुराई, कमी कमजोरी आ जाती है, ऐसे देही अभिमानी बनने से हमारे अंदर हर प्रकार की अच्छाइयां, हर प्रकार की विशेषता, हर प्रकार की कलाएं, हर प्रकार की योग्यताएं आ जाती है। इसलिए बाबा ने कहा, ये नई बात है जो तुम बच्चे ही समझते हो, ठीक है? तो हम सारे दिन में बार बार ये प्रैक्टिस करेंगे, परम धाम से आना, इस देह में प्रवेश करना, कारोबार करना, और देह से न्यारे विदेही बन जाना। जितना समय हम विदेही बन करके रहते हैं, उतना समय हम विकर्मों से मुक्त रहते हैं। जितना समय हम विदेही बन करके रहते हैं, उतना समय हम परमात्म सानिध्य का अनुभव करते हैं, परमात्म मिलन का अनुभव करते हैं। प्रश्न, बाबा को एक ही बात बार बार बच्चों को क्यों समझाना पड़ता है? क्यों समझाना पड़ता है? बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, है ना? इसलिए बाबा को घड़ी घड़ी समझाना पड़ता है। देखिए, मैं सोच रहा था, लौकिक दुनिया में कोई माँ बाप अपने बच्चे को एक बार समझाएंगे, दो बार समझाएंगे, तीसरी बार समझाएंगे, और फिर भी बच्चा भूलता रहेगा, तो चौथी बार वो माँ बाप क्या करेंगे? क्या करेंगे? एक थप्पड़ लगाएंगे, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? बार बार बताना पड़ता है, है ना? गुस्सा करेंगे ना? और वो कितने वर्षों से समझाता आ रहा है, कितने वर्षों से, हम रोज भूले करते रहते, हम भूले करते नहीं थकते, वो समझाते समझाते नहीं थकता। कौन सी बात है जो रोज रोज समझाता है? कौन सी बात है? आत्मा समझो, आत्मा समझो, रोज हम भूले करते हैं। तो बाबा ने कहा ना, कई बच्चे कहते हैं कि बाबा वही बातें तो रोज रोज समझाते हैं, हाँ? तो बाबा ने क्या कहा कि बच्चे तुम वही बातें रोज रोज भूलते हो, तो हमें समझाना पड़ता है। और बाबा ने साथ में क्या बोला कि बाबा देखते हैं बच्चे युद्ध के मैदान में है ना, माया के तूफान आते हैं और माया के तूफान में बच्चे डर जाएंगे, इसलिए बच्चों को माया के तूफान से बचाने के लिए कि बच्चे डरे नहीं, बार बार समझाना पड़ता है कि बच्चे मैं हूं ना। आज बाबा ने कितनी एक बात कही कि बच्चों को कौन सी अकल नहीं है। अभी आप सोचो, हम एक तरफ कहते हैं हम मास्टर नॉलेजफुल हैं, मास्टर ज्ञान के सागर हैं, और दूसरी तरफ पूछते हैं हम कैसे याद करें, याद की विधि बताओ। जो हमारे जीवन में इतना कुछ करता है, आप सोचो उसका हमारे जीवन में कितना एहसान उपकार है। अगर आज वो नहीं मिला होता तो हम कहां होते। हमें माया के दलदल से निकाला, अज्ञान अंधकार से निकाला, अपनी छत्र छाया में बिठाया, अपनी गोदी में बिठाया, उसको हम पूछते आपको हम कैसे याद करें। आप सोचो दुनिया में हमें जरा भी कोई मदद करता है, सहयोग करता है, तो हम बोलते हैं क्या कि हम आपको कैसे याद करें। हम उसके लिए कहते हैं आपका एहसान जीवन भर नहीं भूलेंगे, ये बोलते हैं ना। और बाबा जो हमें देवता बनाता है, जो हमें विश्व महाराजन बनाता है, उसके लिए हम कहते याद कैसे करें। तो बाबा को भी आश्चर्य होता है कि मैं इसके लिए क्या करूं। इतना सब कुछ करने के बाद भी ये पूछ रहा है कि कैसे याद करूं, तो मैं इसको क्या दूं। विश्व की बादशाही से भी बढ़ के कुछ हो सकता है क्या। बाबा कहते मैं अपनी सारी शक्तियां, सारे वरदान, सारे खजाने, सब कुछ तुम्हें दे देता हूं, फिर भी मेरा बच्चा पूछता है मैं कैसे याद करूं, है ना। अच्छा, और बाबा ने एक होमवर्क दिया आज की मुरली में, आप उसके ऊपर चिंतन करेंगे और लिखेंगे। बताओ कौन सी लिस्ट निकालने के लिए बाबा ने कहा। हाँ, तो बाबा ने कहा है तो करेंगे ना। खास बाबा ने होमवर्क दिया है कि जो भूले की है उसकी लिस्ट निकालो, तो आज लिस्ट निकाल लेना। बाबा ने विशेष भगवान टीचर बन करके आपको होमवर्क दिया है तो करना है ना। अच्छा, और आगे बाबा ने क्या कहा। तोता मिल देखना है। बाबा से कौन सा नेत्र मिला है, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। किस लिए मिला है, किस लिए मिला है। सहज बात है, उस नेत्र से देखने के लिए मिला है और दूसरों को देने के लिए मिला है। ऐसे नहीं हमें तो मिल गया ज्ञान का तीसरा नेत्र, बाकी और लोगों से क्या। बाबा ने आपके ऊपर आस रखा है, आपके ऊपर विश्वास रखा है। बड़े बड़े धर्म नेता, राजनेता, अभिनेता, साइंटिस्ट, उनको नेत्र नहीं मिला है, आपको नेत्र मिला है, सबको नेत्र देने के लिए, अंधों की लाठी बनने के लिए। तो बनना है ना। तो कितना बड़ा भाग्य है, कई बार मैं सोचता हूं कितना बड़ा भाग्य है, भगवान की हमारे ऊपर कितनी मेहरबानी है कि इस जन्म में उसने हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया, जिस नेत्र के द्वारा हमने जाना पहचाना और उसके बच्चे बन गए, और हर कलप कलप के लिए ड्रामा में नूद हो गया। ऐसे नहीं अगले कलप में दूसरा कोई आ जाएगा, हर कलप भगवान आपको मिलेगा, हर कलप आपको ही देवता बनना है। कितनी खुशी की बात है, कितनी नशे की बात। तो बाबा ने हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, अब देखें उस नेत्र में कभी माया की धूल तो नहीं पड़ जाती। बाबा ने तो नेत्र दिया है, सारा दिन नेत्र खुला रहता है। अगर हमारी दैहिक दृष्टि जा रही है तो नेत्र बंद है या खुला है? बंद हो गया ना। हमें किसी की अवगुण कमी कमजोरी दिखाई पड़ रहा है तो नेत्र बंद है, माया का धूल। जैसे ही हम देह भान में आते हैं वैसे ही नेत्र बंद हो जाता है, और जैसे ही हम आत्मा बनते हैं वैसे ही नेत्र। अब आप ईमान, मैं पूछूंगा नहीं, आप खुद ईमानदारी से अपने आप से पूछेंगे, सारा दिन में कितना समय हमारा नेत्र बंद रहता है और कितना समय खुला रहता है, है ना? इस प्रकार से आप चेक कर, आत्मा है तो नेत्र खुला है, देह भान में है नेत्र बंद है। अब अपने आप को देख लेंगे। अच्छा, और आगे बाबा ने क्या कहा, सारे दिन में कौन सा अभ्यास बार बार करना है? अशरीरी बनने का अभ्यास बार बार करना है। क्यों अशरीरी बनने का अभ्यास बार बार करना है? क्योंकि अंतिम पेपर जो आएगा, अंतिम पेपर कौन सा है? एक सेकेंड में बाबा की याद आए, बाबा के सिवाय और कुछ भी याद ना आए, उस पेपर में पास होना है। तो बाबा ने कहा अभी से खूब अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, तब अंत में एक बाबा की याद आएगी। जब अभी से खूब अशरीरीपन का अभ्यास करेंगे तो हमारे सामने कोई भी गंदी दृष्टि वृत्ति वाली आत्माएं आएंगी तो हम नहीं दिखाई पड़ेंगे, लेकिन हमारे द्वारा कोई देवी स्वरूप का, देवता स्वरूप को उसको साक्षात्कार हो जाएगा। जितना हम अशरीरीपन का अभ्यास करेंगे तो हमारे सामने कोई आएगा, उसका योग लग जाएगा, उसका मन शांत हो जाएगा, उसके व्यर्थ संकल्प खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे। तो खूब अशरीरीपन के अभ्यास से आत्मा शक्तिशाली बनती है, क्योंकि जब हम अशरीरीपन का अभ्यास करते हैं तो हमारे द्वारा शांति और शक्ति के वाइब्रेशंस फैलते हैं, और शांति और शक्ति के वाइब्रेशंस फैलाना ये सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ा पुण्य है। इसलिए बाबा ने कहा जैसे और चीजों को महत्व देते हो ऐसे ही अशरीरी बनने का भी, इसे भी बहुत महत्व दो और सारे दिन में बार बार अभ्यास करते रहो। तो अभी हम भट्टी में आए हैं तो इस पर भी हम ध्यान देकर के बीच बीच में, जैसे एक क्लास पूरा होता है दूसरा क्लास होता है, बीच में अशरीरी बन जाए। अच्छा, और आगे बाबा ने क्या कहा, याद से अपने कैरेक्टर बनाने हैं, है ना? याद हमारा यथार्थ है, उसकी रिजल्ट है कि हमारे संस्कार बहुत महान, हमारे अंदर रूहानियत दिखाई देगी, हमारे अंदर दिव्यता दिखाई देगी, हमारे संस्कारों में परिवर्तन दिखाई देगा। यदि हम योग में बैठते तो हैं लेकिन हमारे संस्कारों में परिवर्तन नहीं दिखाई देता, रूहानियत नहीं दिखाई देता, तो हमारा योग लग नहीं रहा है, क्योंकि जिससे हम योग लगाने जा रहे हैं वो सर्वगुणों का सागर है, उससे हम बुद्धि योग लगाते हैं तो उसकी शक्तियां हमारे अंदर आएगी ना। लेकिन होता क्या है, जैसे एक मोबाइल आप चार्जर ना उसमें लगाए और स्विच ऑन ही नहीं किए तो चार्ज होगा क्या? ऐसे ही हम बैठे तो सही लेकिन स्मृति का स्विच ऑन ही नहीं किए तो आत्मा चार्ज होगी क्या? इसलिए कल भी बताया था कि जब भी योग में बैठो आप एक नियम बना लो कि जितना भी समय बैठेंगे योग की पावरफुल स्थिति का अनुभव करेंगे और कोई ना कोई संकल्प और लक्ष्य लेकर के ही बैठेंगे। अच्छा, और आगे बाबा ने क्या कहा, अपने दिल से क्या पूछना है, क्या पूछना है, हाँ, मैं कहाँ तक गुणवान बना हूँ, हमारे अंदर कोई आसुरी अवगुण तो नहीं है? क्योंकि आज मनुष्य देख देख करके, है ना, माना सुन सुन करके थक गया है। क्या चाहता है? देखना चाहता है, प्रैक्टिकल जीवन देखना चाहता है। और जब हमारे जीवन में है, है ना, हमारे प्रैक्टिकल कर्म से, व्यवहार से दिखाई देता है, तो हम चाहे किसी को ज्ञान सुनाए या ना सुनाए, हमारे पास वो खुद आकर के पूछेंगे, आप जब से ब्रह्मा कुमारीज में जाने लगे, आपके अंदर बहुत खुशी दिखाई पड़ रही है, हाँ, आपके अंदर बहुत दिव्यता दिखाई पड़ रही है, आपका क्रोध खत्म हो गया है, आप कहाँ जाते हैं, हमें भी ले चलो, है ना, खुद पूछेंगे, खुद कहेंगे। तो कैसे ज्ञान देना है? अपने जीवन से ज्ञान देना है, अपने व्यवहार से ज्ञान देना है, अपने कर्म से ज्ञान देना है। वरदान क्या था? केयरफुल द्वारा, हाँ, माया के रॉयल रूप को पहचान कर उस पर सेफ रहने वाले माया प्रूफ भव। तो हमें माया के रॉयल रूप को पहचानना है। इस पर भी आप चिंतन करेंगे कि माया के रॉयल रूप क्या है। जैसे एक पॉइंट आपको बताऊं, जब हमारे अंदर ये संकल्प आता है, सब चलता है, कई बार हम पूछते हैं, सोचते ना, सब चलता है, अभी तो हम पुरुषार्थी हैं, नए नए हैं, गलती होना स्वाभाविक है, कौन संपन्न संपूर्ण बना है, हर एक के अंदर कोई ना कोई कमी कमजोरी होती है, ये सब क्या है? ये है माया के रॉयल रूप। इसलिए बाबा ने कहा, कभी भी किसी दूसरे को नहीं देखना है, और देखना ही है तो किसको देखो? मुझे देखो ना, मैं बैठा हूं ना, मुझे क्यों नहीं देखते हो? बनना है मेरे समान, और देख रहे हो दूसरे को, तो बनेंगे बाबा समान। तो क्या करना है? बाबा को देखना है और बाबा समान बनना है। स्लोगन क्या था? सहज पुरुषार्थी, ऐसे सहज पुरुषार्थी बनो जो आपको देखकर दूसरे का योग लग जाए। तो सहज पुरुषार्थी कैसे बनेंगे? जितना हम परमात्म प्यार में समाए रहेंगे, उसकी लगन में मगन रहेंगे, हाँ, उतना हम सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। तो हमारी यही शुभ भावना है कि आप सारा दिन सहज पुरुषार्थी बन परमात्म प्यार में समाए रहें, एक की लगन में मगन रहें। इन्हीं शुभ भावना के साथ आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद, ओम शांति।